ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत 25 जिलों के लिए 30 लाख मतपत्र छापे जा चुके हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल जापान के औपचारिक दौरे पर आज कर रहे हैं प्रस्थान। उदयपुर सीमेंट उद्योग के तत्कालीन महाप्रबंधक सुरेंद्र पोडेल सहित 8 व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार ने किया मामला दायर। ईरान में मौजूद नेपालियों से जल्द स्वदेश लौटने और जाने की तैयारी में रहे लोगों से यात्रा रोकने का परराष्ट्र मंत्रालय ने किया आग्रह। और यूक्रेन में विद्युत संकट उत्पन्न, जिससे उद्योग से लेकर परिवहन क्षेत्र तक हुआ है प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत 25 जिलों के लिए 30 लाख मतपत्र छप चुके हैं। आज आयोग में नियमित पत्रकार सम्मेलन के दौरान आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के 2,08,30,000 मतपत्र छापे जा चुके हैं। नमूना मतपत्र लगातार छपे होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यतालिका के भीतर रहकर ही आयोग काम कर रहा है। प्रवक्ता भट्टराय ने आगे कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपने स्थान से शिकायत भेजने के लिए ईमेल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि भेजी गई शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी और भेजने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सरकार ने ईरान में मौजूद नागरिकों से जल्द स्वदेश लौटने का आग्रह किया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद परराष्ट्र मंत्रालय ने अपने वेबसाइट के जरिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान जाने की तैयारी में रहे लोगों से यात्रा स्थगित करने का आग्रह भी किया है। सरकार ने ईरान में मौजूद नेपालियों से अपने महत्वपूर्ण कागजात आसानी से मिल जाने वाले स्थान में रखने और समन्वय के लिए नेपाल स्थित दूतावास और कतार स्थित दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ईरान में कितनी संख्या में नेपाली नागरिक मौजूद हैं, इसका तथ्यांक नहीं है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल जापान के औपचारिक दौरे के लिए आज रात को प्रस्थान कर रहे हैं। नेपाल और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 70वें वार्षिकोत्सव पर जापान सरकार के निमंत्रण पर आज जापान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति नेपाल एयरलाइंस के विमान से प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय ने दी। वे मार्च 21 को स्वदेश लौटेंगे। माघ 19 गते नेपाल जापान कूटनीतिक संबंध के 70वें वार्षिकोत्सव पर जापान सरकार द्वारा आयोजित होने वाले स्वागत समारोह में सहभागी होने के साथ ही राष्ट्रपति पोडेल के विभिन्न उच्चस्तरीय भेंट वार्ताएं होने के कार्यक्रम भी हैं। माघ 20 को टोक्यो स्थित इंपीरियल पैलेस में जापान के सम्राट नारुहितो से राष्ट्रपति पोडेल की राजकीय भेंट होगी और उसी दिन जापान की प्रधानमंत्री सुश्री ताकायची सानाए उनसे भेंट वार्ता करेंगी। इसके अलावा जापानी व्यावसायिक समुदाय के साथ बैठक लगाए तो राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14 हेस डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने उदयपुर सीमेंट उद्योग लिमिटेड में सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और क्लिंकर की हेराफेरी के आरोप में तत्कालीन महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार पोडेल सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दायर किया है। आयोग ने आज काठमांडू स्थित विशेष अदालत में तत्कालीन महाप्रबंधक पोडेल और नायब महाप्रबंधक महेश प्रसाद काफले के खिलाफ प्रति व्यक्ति 12 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की राशि, आपसी मिलीभगत और योजनाबद्ध दुर्भावना के साथ अपने जिम्मे की सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कर उद्योग को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर किया है। इसी तरह निमित्त महाप्रबंधक नवल किशोर शाह सहित उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भंडार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद शाह, क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचंद्र पौडेल, सीमेंट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी और बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जीसी के खिलाफ 46,52,00,000 रूपये से अधिक की राशि के गबन के आरोप में मामला दायर किया गया है। नेपाल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार के 54वें राष्ट्रीय दिवस ईद अल एतिहाद के अवसर पर 267 नेपाली बंदियों को दी गई आम माफी के लिए यूएई सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। नेपाल सरकार ने इस आम माफी को नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों में मित्रता, सद्भावना और सौहार्द का प्रतीक बताते हुए यूएई सरकार के इस मैत्रीपूर्ण और मानवीय कदम की सराहना करते हुए आज एक विज्ञप्ति जारी की है। आम माफी प्राप्त नेपाली नागरिकों के खिलाफ यदि कोई अन्य लंबित कानूनी मामला या प्रतिबंध नहीं है तो वे यूएई के प्रचलित कानून के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वदेश लौट सकेंगे। रसुआ जिले के टिमुरी रसुआ गढ़ी खंड में सड़क सुधार के दौरान आए सूखे भूस्खलन के कारण राजमार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। कल शाम को आए भूस्खलन से चीनी सामान आयात के लिए केरूंग की ओर जा रहे कंटेनर घट्टे खोला में रुके हुए हैं। इसी तरह काम के सिलसिले में केरूंग जाकर घर वापस आ रहे नेपाली नागरिक सड़क अवरुद्ध होने के कारण नेपाल चीन मितेरी पुल के पार चीनी क्षेत्र में ही रुके हुए हैं। राजमार्ग पुनः संचालन करने के लिए स्कावेटर की सहायता से मलबा हटाया जा रहा है। ये जानकारी सीमा प्रहरी कार्यालय टिमुरे के इंस्पेक्टर विक्रम कुंवर ने दी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने बताया है कि नेपाल में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक अनुसार सन 2024-25 में समग्र वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक 0.47 से बढ़कर 0.53 हो गया है। ये जानकारी राष्ट्र बैंक द्वारा आज सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में उल्लेखित है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार, डिजिटल माध्यमों के उपयोग में वृद्धि और सेवा गुणवत्ता में सुधार के कारण वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक में स्थिर और व्यापक प्रगति हुई है। इसी तरह वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, उपभोक्ता संरक्षण संयंत्र को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहक अनुभव में सुधार के चलते गुणवत्ता सूचकांक में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। नारायणगढ़ बुटबल सड़क खंड के पूर्वी खंड अंतर्गत सभी पुलों का निर्माण पूरा हो गया है। निर्माण हो चुके 34 पुलों से वाहन संचालन भी हो गया है। ये जानकारी नारायणघाट बुटबल सड़क परियोजना पूर्वी खंड ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक खदान धंसने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी विद्रोही प्रशासन ने दी। नॉर्थ किवू क्षेत्र के विद्रोही गवर्नर के प्रवक्ता लुमुम्बा काम्बेरे मुईसा ने पत्रकारों को बताया कि रुबाया शहर में स्थित यह खदान भारी बारिश के कारण बुधवार को धंस गई। उस समय मृतकों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त खदान में महिलाएं और बच्चे भी काम कर रहे थे। यहां कोल्टन की खुदाई की जा रही थी जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम खनिज है। खदान के एक पूर्व सुपरवाइजर के हवाले से बीबीसी ने बताया कि इस साइट का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि रखरखाव की कमी के चलते हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में भी काफी मुश्किलें आती हैं। भारत ने आज अपना केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश किया है। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। मंत्री सीतारमण का यह लगातार 9वां बजट था। बजट में अगले 5 सालों में बायो फार्मा के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए निवेश और रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह सरकार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी जिनसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में भूटान को विकास सहायता के रूप में सबसे ज्यादा 2,288 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद नेपाल को 800 करोड़ रुपए और मालदीव और मॉरिशस को 550-550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मन्त्रालय एमई को कुल 22,118 करोड़ रूपये का बजट मिला है। अगले वित्त वर्ष के लिए बांग्लादेश को 60 करोड़ रूपये दिए गए हैं। 2025-26 में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रूपये का प्रावधान था। ये कटौती ऐसे समय की गई है जब बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए उसे 2026-27 में 150 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। 2025-26 में यह राशि 100 करोड़ रूपये की थी। श्रीलंका के लिए 400 करोड़ और म्यांमार के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत 25 जिलों के लिए 30 लाख मतपत्र छापे जा चुके हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल जापान के औपचारिक दौरे पर आज कर रहे हैं प्रस्थान। उदयपुर सीमेंट उद्योग के तत्कालीन महाप्रबंधक सुरेन्द्र पोटेल सहित 8 व्यक्तियों के विरूद्व भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार ने किया मामला दायर। ईरान में मौजूद नेपालियों से जल्द स्वदेश लौटने और जाने की तैयारी में रहे लोगों से यात्रा रोकने का परराष्ट्र मंत्रालय ने किया है आग्रह। और कांगो में एक खदान धंसने से 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।